বিদ্যার বিলাসে কটাই নৌকার পরম সাহসে আমি,
বিদ্যার বিলাসে কটাই নৌকার পরম সাহসে আমি,
তোমার চরণ নভজিনু কবু এখন শরণ তুমি,
তোমার শরণ নভজিনু কবু এখন শরণ তুমি,
পড়িতে পড়িতে ফরসা পড়িল জানে গতি হবে মানি,
পড়িতে পড়িতে ভরসা পড়িল
সে অসফল সে জ্ঞান দুর্বল সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি, জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা,
জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
মোহ জন্ম মায়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাঢ়া,
মোহ জন্ম মায়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাঢ়া,
গাধা হয়ে সংসারে রা বোঝ বহিনু অনেক পাল,
সে গাধা হয়ে সংসারে রা বোঝ বহিনু অনেক পাল,
বাধকে খন শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো, বাধকে খন শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো, জীবন যতন হইল এখন সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেদ,
জীবন যতন হইল এখন সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেদ,
অবিদ্যার জল ঘটিল ভীষম সে বিদ্যা হইল শেল, অবিদ্যার জল ঘটিল ভীষম সে বিদ্যা হইল শেল,
তোমার চরণ না কিছু ধন সংসার না আছ পার, তোমার
ভক্তি বিনোদ জড় বিদ্যা ছাড়ি তব পাদ তোরে সার,
ভক্তি বিনোদ
বিদ্যার বিলাসে কটাই নৌকার পরম সাহসে আমি,
বিদ্যার
So there he could pick up immediately just by hearing this thing. लेकिन अभी अपनी म्यूजिक ज़्यादा माँ के गुणगान में लगाते थे अभी तक, अभी भगवान के गुणगान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो माँ का वास्तविक गुणगान भी है। तो वही माँ विद्या के बिना उन्हीं का यहाँ पर भी गुणगान है, जिसकी वजह से जीवों का अपयश होता है। व्हाट हैपेंड? विद्यार विलासे कटाइनु काल परम साहसे आमी, तुमार चरण ना भजिनु कभू एक होना शरण तुमी। With great enthusiasm, I spent my time in the pleasures of mundane learning and never worshipped your lotus feet, O Lord. Now you are my only shelter. तो ये भजन भक्तिवान ठाकुर अपनी लीला के अंतर्गत प्रौढ़ अवस्था में, यानी कि वृद्धावस्था, प्रौढ़ नहीं, वृद्धावस्था के अंदर लिख रहे हैं। तो पूरे जीवन का एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने अपने जीवन का ज्यादातर समय बड़े उत्साह से ये जो जड़ विद्या है इसके विलास, इसका विलास मतलब उसके आनंद लेने में, विद्या को ग्रहण करने के साथ जो जड़ आनंद प्राप्त होता है उसमें मैंने बिताया है, और उस आनंद को लेने के कारण आपके शरण में आने का सुध मुझे कभी नहीं हुई। इसलिए मैंने आपकी शरण नहीं ली और मैं सोचता रहा कि ये जो जड़ विद्या का जो आनंद है वो वही जीवन का सार है, वही वास्तविक आनंद है। इसलिए मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं आपकी शरण लूं। तो हम अपने जीवन में अलग अलग स्तर से जब गुजरते हैं चेतना में, तो अलग अलग चीजें हमें आनंद देती हैं अलग अलग चेतना के स्तर पर, और अलग अलग चीजें हमें कष्ट भी देती हैं उसी इस चेतना के स्तर के अनुसार। जैसे सबसे पहले हमारी चेतना का स्तर बाल्यावस्था में वो अन्नमय स्तर होता है, जिसमें हमें केवल शरीर है और वो मेंटेन हो रहा है, उससे आनंद मिलता है, और भूख और प्यास दैट इज प्राणमय, ग्रॉस रूप में शरीर को टिकाना यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसके आगे बाल्यावस्था के बाद 5 साल की उम्र के बाद में फिर वो प्राणमय स्तर, जिसमें भूख और प्यास वो हमारा केंद्र आता है, और खाने में और अपनी ये शरीर की इस प्रकार की चीजों को पूरा करने में जीव बहुत आनंद देता है, लाइक दैट। सो फिर एक समय आता है ज्ञानमय, जिसमें कि विद्या, ये बहुत ही जगत के विषय में जानना, उत्सुकता, इसमें बड़ा आनंद आता है, सब कुछ जानना है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। उस समय में तो अगर उस समय से पहले अगर हमें भक्ति प्राप्त हो जाए तो हमारी जो जिज्ञासा है वो ब्रह्म जिज्ञासा में परिवर्तित हो सकती है, नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है कि वो भौतिक जिज्ञासा बन के रह जाती है और पैसा कमाने की तरफ वो डाइवर्ट जाती है, इंद्रिय भोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं उसमें परिवर्तित हो जाती है, और उसके लिए वर्तमान समय में भौतिक विद्या जड़ विद्या ये उसका माध्यम है पैसा कमाने के लिए, डिग्रीज। तो ज़्यादातर लोग इस प्रकार से डिग्रीज या धंधा करना उसका ज्ञान प्राप्त करना अलग अलग प्रकार से, लेकिन हेतु वही है कि हाउ टू गेन मनी, हाउ टू अर्न मनी। पोड़ीते पोड़ीते भरोसा भारिलो ज्ञाने गति हबे मानी। रीडिंग ऑन एंड ऑन माई होप्स ग्रू एंड ग्रू फॉर आई कंसिडर द एक्विजिशन ऑफ मेटीरियल नॉलेज टू बी लाइफ्स ग्रेट गोल। मेटीरियल नॉलेज प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है ऐसा मुझे भरोसा बढ़ता गया मेरा जैसे मैं बढ़ता गया। तो ये भौतिक विद्या अर्जन करना और इससे फिर पैसा कमाना यही जीवन का लक्ष्य है ऐसा सबका भरोसा बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम भौतिकतावादी लोगों के संसर्ग में रहते हैं और उनसे सुनते रहते हैं बचपन से पैसा कमाना है खूब आगे बढ़ना है भौतिक विद्या प्राप्त करनी है, तो हमें पूरा भरोसा रहता है कि इसके अलावा जीवन में और है ही क्या, सबसे बड़ी चीज यही है प्राप्त करने योग्य। जब हम लोग प्लस टू में थे तो हमारे लिए उस समय एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना वही परम लक्ष्य था, उसके अलावा और हमेशा कोई एंट्रेंस एग्जाम जो होते थे उसका रिजल्ट देखना कौन आईआईटी में टॉप किया है कौन मेडिकल में टॉप किया है कितने हमारे आसपास के लोगों में हमारे बैच में सीनियर बैच में कौन लोग कहाँ हैं और उनको देख देख के तैयारी होती थी हमारी। अभी अगले दो साल बाद हमारा भी एग्जाम होना है अभी जैसे अभी आप लोग कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में, यहाँ सब बोर्ड लगा रहे हैं ना इस साल का भोपाल का गेट टॉपर इस साल का ये फलाना टॉपर, तो ऐसे करके सब वो बढ़ाते हैं उत्साह बढ़ाते हैं एक दिन हमें भी हमारा फोटो भी यहाँ आना है टॉपर करके। सो ऐसे भरोसा बढ़ता है यही वाह कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये रियल अचीवमेंट ऑफ लाइफ कितना इसमें आनंद आता है सारे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं इसने टॉप किया है ऐसे करके पूरा पंप किया जाता है कि कितनी बड़ी बात है ये कितनी महत्वपूर्ण बात है ये इतना सब जगह नाम हो रहा है इतनी सब गुणगान गाए जा रहे हैं। सो जब किसी का सिलेक्शन होता है कोई मेडिकल में तो सारे रिलेटिव्स बधाइयाँ देते हैं पूरे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी वाह बेटे क्या कमाल कर दिखाया हमारा ऐसे पूरा छाती फूल जाती है अचीव्ड इट आई डिड इट। से आशा विफले से ज्ञान दुर्बला से ज्ञान अज्ञान जानी। लेकिन भक्तिवेल ठाकुर कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या रियलाइजेशन हो रहा है परिपक्व अवस्था में अभी भगवान की शरण वो लिए हैं तब उनको ये कैसा क्या रियलाइजेशन हो रहा है कि हाउ फ्रूटलेस दोज होप्स टर्न्ड आउट टू बी फॉर ऑल माय नॉलेज प्रूव फीबल नाउ आई नो दैट ऑल सच एरिडिशन इज एक्चुअली प्योर इग्नोरेंस। तो वो सब जो आशा थी भरोसा था कि इससे मुझे परम आनंद प्राप्त होगा जीवन का लक्ष्य यही है इससे बड़ा और सुख कोई नहीं है अभी वो जो सब आशा है वो विफल प्रतीत हो रही है फेल हो रही है वो आशा विफल हो गई। आशा थी कि ये जीवन की सिद्धि है और अगर हम बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे समाज के अंदर बहुत अच्छी सिचुएशन प्राप्त कर लेंगे तो हम नित्य सुख प्राप्त हो जाएगा हमें लाइफ में इससे अलावा और क्या है। जैसे हम जब कोचिंग पढ़ते थे मेडिकल की तो मेडिकल और इंजीनियरिंग सब कंबाइंड ही थे सब लोग कई सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड थे सब लोग थे वहाँ पर तो उसमें एक का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तुम सोचते हो अभी तो उसका तो जीवन तर गया बस अभी और क्या रह गया नथिंग एल्स इज लेफ्ट बस। तो ऐसे ये आशा होती है, अगर ये हो जाएगा फिर कोई चिंता नहीं। हमारे माता पिता भी ऐसे बताते हैं हमको, बेटे भी तुम्हारा बस ये दसवीं और बारहवीं दो ही चीज़ें अगर ये तुमने ढंग से पढ़ लिया हो गया, फिर जीवन में और कुछ दिक्कत कभी नहीं आएगी, बस ये एक बार मेहनत कर लो बस। ऐसे कितनी बार उन्होंने बोला, कितनी बार हम लोग ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन पार कर चुके हैं, लेकिन ये आशा सभी फल हो जाती है, क्योंकि जीवन में ऐसा कोई ये भौतिक सिद्धियाँ भौतिक अचीवमेंट्स ऐसे कोई है ही नहीं जिसको प्राप्त करने से हम कह सकें कि अभी भौतिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि भौतिक अचीवमेंट से और नई प्रकार की समस्याएं वहां से शुरू होती हैं, कुछ खत्म होते हैं तो कुछ नई शुरू होती हैं। तो इसलिए वो तो केवल झूठा भरोसा है, झूठा आशा है, आशा दिलाना। अज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम ये भौतिक चीज प्राप्त कर लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। दुराशया ये बहिरअर्थ मानिना, ये दुराशा है, होप अगेंस्ट होप। जैसे वो मिराज दूर से पानी देख करके वहां पहुंच जाएंगे तो बस पानी मिल जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं होता है, वहां पहुंचने पर भी वो नहीं मिलता है। तो इसलिए ये दुराशा है, तो ये आशा सब विफल हो गई। और ये ज्ञान अभी दुर्लभ दुर्बल लग रहा है, फीबल, इसमें कोई शक्ति नहीं है। हमारी ये जो एज है उसमें हमको लगता है इसमें ज्ञान में कितनी शक्ति है, ज्ञान के बल होते पर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें समझ में आना शुरू होता है कि ये ज्ञान फीबल है आत्मा को संतुष्ट करने में। ये सब भौतिक उपलब्धियां आत्मा को संतुष्ट करने में फीबल है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को लगता है कि पूरा दिन क्रिकेट खेलना जीवन की सिद्धि है, नहीं? हमें भी ऐसा लगता है, कॉलेज स्कूल से आते थे और बैट लेकर के गार्डन के अंदर सारे के सारे बच्चे एकदम से लगता था कि वाह सारा दुनिया पागल है, उनको पता ही नहीं है क्रिकेट खेलने में कितना मजा है। एक घंटा दो घंटा तीन घंटा रात होने तक, और पेरेंट्स जबरदस्ती अभी अंदर आओ अभी कब तक खेलोगे, आते 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 अभी। इट वॉज लाइक सच ए थिंग, वो अवस्था होती। भक्ति ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है उसमें भी, नहीं हर स्टेज में हमें एक चीज लगती है वो लाइफ का अचीवमेंट है, वो बोले पूरा एब्जॉर्प्शन। उसी प्रकार से टीनेज में युवक युवती, दैट इज द क्लाइमेक्स ऑफ लाइफ एट दैट टाइम, उससे बड़ा आनंददायक स्रोत और कोई लगता है? गर्लफ्रेंड्स बनाना, उनसे बात करना, लव लेटर लिखना, करेक्ट, लाइफ का गोल, वाह इससे बड़ा आनंद क्या है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है उस समय स्टेज में लगता है कि ये लोग कैसे पागल है, इनको ये पता ही नहीं है जी क्या कैसे, दे आर वेस्टिंग देयर लाइफ, कैसे सब प्रतीत होते। से ज्ञान अज्ञान जाने, अभी मैं वो जान रहा हूं कि ये सब ज्ञान वास्तव में अज्ञान था, ये सब ये ज्ञान नहीं है, सभी अज्ञान था, इग्नोरेंस था, क्योंकि ये जीव का कोई हित नहीं होता, इससे जीव का इससे कोई संबंध ही नहीं है, ये तो केवल शरीर और वो भी अनावश्यक और वो भी सब इंद्रिय भोग के लिए हम सब करते हैं, उसका जीव से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो अनर्थ है, वो उसको कोई अर्थ नहीं है, उसको कोई रियल वैल्यू नहीं है, इट्स जस्ट सुपरफिशियल। हमने मान लिया है ये अर्थपूर्ण है, जैसे बच्चे ने अपना मान लिया है ये क्रिकेट, ये बैट वो बॉल लगनी चाहिए, वाह छक्का लगना चाहिए, मान लिया हमने, कितनी बड़ी बात है ये, है ना, रियल इसको क्या, इसका आत्मा से क्या संबंध है, उसका क्या रही है, छक्का मारा के दुक्का। जड़ विद्या जतम मायार वैभव तोमार भजने बाधा, मोहा जन्मिया अनित्य संसारे जीवो के कौरे गधा। All so-called knowledge of this world is born of the flickering potency of your illusory energy, Maya. ये जड़ विद्या है, ये माया का वैभव है, ये माया शक्ति जो है आपकी इल्यूजरी पोटेंसी, जो भ्रमित करने वाली शक्ति है, ये उसका वैभव है, ये उसका वैभव है, ये सारा जो प्रकटीकरण है माया का, माया शक्ति का वैभव है। जैसे कोई मैजिशियन होता है वो बहुत आश्चर्यजनक चीजें प्रस्तुत कर देता है ना मैजिक से, है ना, बहुत कुछ लगता है ऐसे स्वर्ग प्रस्तुत हो गया है ऐसे, लेकिन वो क्या है, वो तो माया है, माया जाल, मैजिक का एक नाम माया जाल भी है ना, माया जाल। तो ऐसे ही वो वैभव है, लाइक अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर फल है, कितना सुंदर फूल है, कितनी ब्यूटी है, कितना ये है वो है, लेकिन वो सब इल्यूजन है। सो इसी तरीके से ये सारा जो जड़ विद्या है ये सब माया का वैभव है, और ये तुम्हार भजन है बाधा, और ये इट्स एन इम्पेडिमेंट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशन सर्विस टू यू। ये आपके भजन में बाधा है, क्योंकि इससे हमें लगता है कि ये आनंद मिल जाएगा हमें, इससे ऐसी दुराशा होती है, तो भजन करने में रुचि क्यों आएगी फिर भगवान की सेवा करने में, भगवान के विषय में जानने में। इसलिए आप देखिए कितने लोगों को रुचि है, हम कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं आइए सीखिए जानिए भगवान के विषय में, भगवान क्यों, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट थिंक आई नीड टू नो भगवद्गीता, आई एम सेटिस्फाइड। तो रुचि नहीं उत्पन्न होती, तो भगवान के भजन में बाधा होती है, उससे उसका महत्व तो नहीं समझ में आता है। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्ट, ये सब हमारे अनगिनत चीजें हैं संसार में हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हजार माया के पास अनलिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस करने के लिए चीजें हैं हमारा ध्यान भगवान से दूर हटाने के लिए। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है ये जड़ विद्या, क्योंकि ये वर्तमान समय में विशेष रूप से जड़ विद्या ये इंद्रिय भोग करने का साधन उपलब्ध कराने में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय में ये जड़ विद्या एक बहुत महत्वपूर्ण, कितनी आप देखिए कितनी एनर्जी और कितना फोकस है पूरी सोसाइटी का जड़ विद्या के ऊपर, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कितना पैसा, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है ना, जितनी यहाँ पर टोटल बसेस होंगी शायद भोपाल के अंदर उससे ज़्यादा बसेस जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस की बसेस हैं, नहीं है आपके एलएन सिटी में वो ग्राउंड पूरा भर जाता है ना, वो कंप्लीटली पूरा इतना बड़ा कैंपस है पूरे, इसमें सारे कितनी बसेस दे मस्ट बी सम हैं, 100 तो नहीं होंगी, अराउंड 50-60 बसेस एक एक कॉलेज में, ऐसे 100 कॉलेज आर देयर अराउंड इन भोपाल है ना, वही तो केवल कॉलेज है, और इतने सारे तो हॉस्टल में रह रहे हैं स्टूडेंट उसके अलावा, और फिर वो स्कूल्स हैं, कितना बड़ा एंडेवर है, कितने लोग, और सब लोग ये सोचते हैं कि कितना महान काम है, जब माता पिता अपने बच्चे को स्कूल बस में छोड़ने आते हैं तो लगता है कि अचीवमेंट ऑफ लाइफ, हाँ हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कितना उनका महान काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा के सजा दिया ना, बहुत टाइम निकालती है माता सब बच्चों का, ऐसे टाई लगाती है मिलाती है, उसको ड्रेस पहनाती है, उसको बड़ा उसको गर्व होता है मैंने अपना जीवन सफल कर दिया, माता पिता होने का अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, बच्चे को मैंने अपने स्कूल भेज रहे हैं हम लोग, उसका भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, भविष्य क्या है, गधा, जीवों के कोरक गधा, इसका निर्माण कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा गधा बना रहे हैं, छोटे गधे से बड़ा गधा का निर्माण कर रहे हैं, ये उसको कर रहे हैं। तो भक्तम ठल कह रहे हैं इंडलजेंस इन मंडेन नॉलेज वेरली मेक्स एन एस ऑफ द इटर्नल सोल बाय एनकरेजिंग हिज इन्फैचुएशन विद द टेम्पररी वर्ल्ड। तो ये भौतिक विद्या क्या करती है, ये मोह जन्माया, ये मोह को जन्म देती है, मोह इन्फैचुएशन, अहम ममेति, ये मैं शरीर हूं और शरीर का इंद्रिय भोग ही मेरा वास्तविक सुख है, ये मोह, ये इल्यूजन को वो बढ़ाती है ये मटेरियल एजुकेशन। और ये इसके इसलिए क्या होता है, आत्मा जो है वो गधे के भाव में आ जाती है, जानवर एनिमलिस्टिक ना, एनिमल का करेक्टरिस्टिक क्या है, वो देहात्मा, कुत्ता मतलब मैं कुत्ता ही हूँ जीवन भर, वो इसके आगे और कुछ नहीं सोच सकता है, मेरा धर्म है भोंकना, और गधा मेरा धर्म है ढेंचू ढेंचू बोलना, और गधी के साथ सेक्स करना, और दिस इज लाइफ, और इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं सोच सकते। तो ये मोह, हालांकि वो आत्मा है, वो कृष्ण का नित्य दास है, लेकिन भूल ही गया, ये तो पूरा भूल गया। तो उसी प्रकार से जब मनुष्य जीवन मिलता है तो अभी वो देहात्म बुद्धि से निकलने का एक चांस मिलता है, तो ये करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद एक सुनहरा अवसर हमको मिलता है अभी आत्म साक्षात्कार करने का, कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, इस बात को समझने का एक इतना स्वर्णिम अवसर हमको मिलता है, तो अगर बचपन से भगवत विद्या दी जाए तो वो जो भी देहात्म बुद्धि है अभी वो खत्म करके भगवत कृष्ण चेतना विकसित हो सकती है। लेकिन ये जो भौतिकतावादी एजुकेशन है, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, वो जो चांस था मनुष्य का ये साक्षात्कार करने का, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देती है। लाइफ का गोल है पैसा कमाना, पैसा कमाना। नर्सरी क्लास से, प्ले स्कूल से पूरा माहौल उस प्रकार का है कि जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय भोग करना, इंद्रिय भोग कर। हर दिन बच्चा वो सुनता है, क्योंकि वो जिन टीचर्स, वो जिनके साथ में रह रहा है, उसका पूरा आयोजन इसीलिए हुआ है बच्चे को ट्रेन करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए, इंद्रिय भोग करने की ट्रेनिंग के लिए। इज़न्ट इट, पूरा माहौल, पूरा हमारा स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन इसी से पूरा भरा हुआ है। सो आप सोचिए बच्चे को कितना, उसका जो वो चांस था, जन्म लिया उसने, मनुष्य शरीर मिला, उसको पूरा कत्ल कर देते हैं उसको, इसलिए उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं श्री प्रभुपाद। तो इसलिए आत्मा का जो चांस था उसको, वो कहते, वो एक टी शर्ट में लिखा होता है ना, आई वॉज बॉर्न एज ए ह्यूमन बींग एंड देन आई गॉट एजुकेटेड, राइट। मनुष्य जन्म मिला और फिर दुर्भाग्य से एजुकेशन मिल गई, मतलब खत्म हो गया मनुष्य जीवन का फिनिश। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो काम था, हरे कृष्ण मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था वो उससे खत्म होता है, मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन प्राप्त करके वो खत्म होता है। तो इसलिए जीव का कोर है गधा। तो ये सब मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन है, ये सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स बनाने के लिए है। आपको लग सकता है कि ये सब क्या इतने कठोर वचन बोलते हैं, ऐसा क्या है, इतना क्या बुरा है, ये भी तो जरूरी है। सो मेनी थिंग्स यू कैन थिंक इन लाइक दैट। जो न्यूफाइड डिवोटीज होते हैं दे थिंक लाइक दैट। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। कनिष्ठ अधिकारी के लिए क्या होता है, वो भगवान की भक्ति करता है लेकिन उसकी मानसिकता कनिष्ठ होती है, इसलिए मेटेरियलिस्टिक भौतिक चीजों के प्रति उसकी बड़ी उसको बहुत सराहना करता है। हाँ, तो ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। जैसे कोई व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बहुत बड़ा चढ़ा है, कोई बहुत एजुकेटेड है, कोई बहुत अच्छा बुद्धिमान है भौतिक दृष्टि से, तो वो उसको बहुत अप्रिशिएट करता है हृदय में कि ये कितनी अच्छी बात है कि इसका खूब पैसा है, भौतिक दृष्टि से बड़ा चढ़ा है। इसलिए जब कोई मध्यम अधिकारी ऐसी मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज का विरोध करता है कि ये सब बकवास है, ये सब यूजलेस है, तो उसके हृदय में झटका लगता है, कैसे विरोध कर रहे हैं, क्या बकवास, संसार कैसे चलेगा इसके बिना, है ना, ये भी तो जीवन में इतना जरूरी है। दे थिंक लाइक दैट, क्या है, इट्स टू मच, ये तो एक तरफा ही हो जा रहा है उससे। ये मेटेरियलिस्ट, ये न्यू फाइव डिवोटी भक्त प्राय का लक्षण है। और ज्यादातर लोग जो भगवान के भक्ति में होते हैं वो तो यही स्तर पे होते हैं। हम भी तो कृष्ण भक्त हैं, लेकिन ऐसा क्या कि ये पढ़ाई के, पढ़ाई करना ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये क्या है, दे फील लाइक दैट, टू मच पिंच्ड हर्ट, ये तक उनका टूट जाता है, विदीर्ण हो जाता है ऐसे वचनों को सुन करके। फिर वो कहते हैं तो बाबा बना देंगे, दे फील लाइक दैट। उनको ये बात कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल कृष्ण की शरण प्राप्त करना ही है, ये उनको, ये वो स्वेलो नहीं कर पाते हैं ये चीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। लेकिन ये वास्तविकता है, जीवन के और कुछ करने को ही नहीं जीवन में, दिस ओनली टू सर्व कृष्ण, दैट्स ओनली गोल ऑफ लाइफ, ओनली वर्थ डूइंग, वर्थ थिंग, वर्थ डूइंग। एकमात्र करने योग्य मनुष्य जीवन में जो है दैट इज कृष्ण भक्ति। उस कृष्ण भक्ति को करने के लिए शरीर को जितना जरूरी है उतना निर्वाह, उतना टिकाने के लिए भौतिक कार्य करना चाहिए। वो जो जड़ विद्या, फिर वो फिर जड़ विद्या नहीं रहेगी। अगर हम केवल इस शरीर को टिकाने के लिए कार्य करें वो वर्णाश्रम के अंदर आ गई, वो फिर अपरा विद्या के अंदर आ गई। शास्त्रों में भी अपरा विद्या है, खेती कैसे करना है या कुम्हार या अलग अलग चीजें हैं, इवन इंजीनियरिंग भी उसमें हो सकती है, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल अलग है, चेतना बिल्कुल अलग है, जस्ट टू मेंटेन दिस बॉडी। विरोध यहां किसका हो रहा है, मेंटेनिंग बॉडी फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग इट, दैट्स इट, नॉट फॉर द सेक ऑफ सर्विंग कृष्णा, वो है जड़ विद्या, वो घृणित है, क्योंकि वो जीव की चेतना पूरी अनावश्यक इंद्रिय भोग की तरफ ले जाएगी, क्योंकि क्यों जीव संतुष्ट होगा जस्ट टू मेंटेन द बॉडी, नो, हम लोग को तो आनंद चाहिए ना, सो वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड जस्ट मेंटेन द बॉडी, वी विल ट्राई टू एंजॉय थ्रू दिस बॉडी, है ना, और उससे पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर वो जो ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में कोई भी भौतिक जगत की ज्ञान के विषय में मना किया गया है, भौतिक जगत में वेदों में खुद भौतिक जगत के विषय में ज्ञान है, लेकिन वो डोंट स्लीप, वो भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो भगवान की सेवा में जो लग सके, जिससे शरीर का निर्वाह हो सके, उस प्रकार का ज्ञान। लेकिन हम जिसका विरोध कर रहे हैं, या भक्तिम ठाकुर जिसको जड़ विद्या जो कह रहे हैं, मायारा वैभव जो कह रहे हैं, या चाणक्य पंडित जिसको कह रहे हैं कि सांप मणिना भूषिता सर्पहा, कि ये जो मणि से भूषित सर्प है क्या वो भयंकर नहीं होता है, उसी प्रकार से ये जो जड़ विद्या से भूषित लोग होते हैं PhDs, तो वो क्या भयंकर नहीं होते हैं, जैसे कि मणि भूषित सर्प भयंकर, तो सो दे आर इक्वली इग्नोरेंट, भले ही उनको भौतिक विद्या प्राप्त हो गई है, लेकिन वो क्या है भौतिक विद्या, मतलब भगवान को भूलने के लिए है वो, क्योंकि उससे उनका इन्फेक्चुएशन बढ़ रहा है, आई कैन बी हैप्पी इन दिस वे, तो उसका विरोध हो रहा है ना, उसका विरोध हो रहा है। और दुर्भाग्य से वर्तमान समय में हमारी सारी मेटेरियल एजुकेशन मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन है, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो भक्तिवर ठाकुर और शास्त्र इज नॉट अगेंस्ट, और इट इज नेसेसरी भौतिक जगत के विषय में, शरीर के जैसे आयुर्वेद है, शरीर के विषय में कुछ कैसे खाना है, दैट इज नेसेसरी, उसी प्रकार से कुछ घर बनाने का विज्ञान, सम सिविल इंजीनियरिंग इज नेसेसरी, बट दैट्स वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसकी बहुत सिंपल तरीके से है वो, बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म वही आवश्यक है। ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, ये कैसे डेवलप हुई है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, अनावश्यक इंद्रिय भोग जीवन का लक्ष्य को निर्धारित करने से हुई, उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे को डिस्टर्ब करती है। फिर भक्ति दादा कहते हैं, से गधा होए संसार बोझा बोहिनु अनेक काल। हेयर इज वन पर्सन, भक्ति ठाकुर अपने को कहते हैं, हेयर इज वन पर्सन हु हैज बीन टर्न इन टू सच एन एस। यहां पर एक आदमी है जो ऐसे ही गधा बना दिया गया, जिसको हु फॉर सो लॉन्ग हैज कैरिड ऑन हिज बैक द यूजलेस बर्डन ऑफ मेटीरियल एग्जिस्टेंस। अभी गधे का काम क्या होता है, बोझा ढोना है ना, तो हमें पहले गधा बना दिया जाता है और फिर किस लिए, बोझा ढोने के लिए, करेक्ट। तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा बड़ा बड़ी कंपनी में जॉब लग गया है, यानी कि क्या हो गया, और बहुत ज्यादा बोझा ढोने के लिए आप तैयार हो गए, यू हैव बीन सेलेक्टेड दैट यू आर फिट टू कैरी अ वेरी वेरी बिग बोझ, दैट इज कॉल्ड गुड कंपनी में प्लेसमेंट, गुड जॉब, यू हैव बीन सर्टिफाइड एज ए क्वालिफाइड एस, आपकी कैपेसिटी दूसरे लोगों से ज्यादा है बोझा ढोने की, इसलिए आपको अच्छा जॉब दिया गया है, करेक्ट। बाकी लोग 5-6 घंटे में थक जाएंगे, लेकिन आप ऐसे गधे हैं जो 10 घंटा काम करके भी नहीं थकेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको बाकी लोगों को 100 ग्राम घास दी जाती है, आपको 200 ग्राम घास दी जाएगी। ठीक है, बाकी लोगों की पगार जो है वो 10,000 थी, आपको 50,000 रुपए दी जाएगी, लेकिन वो 50,000 हो कि 10,000 हो, काम उससे क्या करेंगे आप, खाना है ना। तो गधे को वो घास तो अपने आप उग रही थी, लेकिन उसको लगा नहीं, जब मैं ज्यादा बोझा ढोऊंगा पूरा दिन वफादारी से, तब मुझे घास मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं ना, इसलिए उसको गधा कहते हैं। अपना भी खा सकता था वो घास बिना बोझा ढोए, लेकिन उसको लगा नहीं नहीं जब तक बोझा नहीं ढोऊंगा तब तक घास नहीं खा सकता मैं। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में सबको गधा बनाया था एजुकेशन से, उनको लगता है अभी मुझे अगर जॉब नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, चिंता। जॉब के बिना, जॉब मतलब क्या, नौकरी, मुझे नौकरी के बिना मैं अपने को टिका नहीं पाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा अगर नौकरी नहीं लगी तो, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता नौकरी के बिना। क्योंकि उनको पूरे स्कूल कॉलेज में ये एकेडमिक एजुकेशन दी जाती है और व्यावहारिक ज्ञान कोई दिया नहीं जाता है, ठीक है, अपने आप कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ वो कर सकें और अपना शरीर पालन पोषण कर सकें ऐसी कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। वो सारी एजुकेशन ऐसी है जिसमें उनको केवल एक मास्टर चाहिए, नौकरी करनी पड़ेगी तभी वो मालिक उनको देगा घास, तभी वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे, करेक्ट। ये मॉडर्न एजुकेशन, अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है तो डिग्री का वैल्यू कब है, जब आपको जॉब लगेगा, करेक्ट। अपने आप से आप उसको आप डायरेक्टली अपने शरीर का पालन पोषण उससे आप नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमारे को इतनी चिंता हो जाती है कि प्लेसमेंट को लेकर के, नौकरी को लेकर के, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, खाऊंगा कैसे, कैसे परिवार चलाऊंगा, कैसे माता पिता को देखरेख करूंगा। तो ये शूद्र एजुकेशन है, बिल्कुल सबको शूद्र बनाता है, लोअर क्लास शूद्र बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर भक्तिवन ठाकुर कह रहे हैं कि ये बोझा ढोने के लिए हमको तैयार किया था, इसलिए वो कह रहे हैं गधा बनाया था, वी आर मेड लाइक दैट। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें समाज का एक वर्ग है जो शूद्र की तरह से रहता है, जो लोग इंडिपेंडेंटली कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं उनके लिए है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जो आजकल के जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको बहुत चिंता है ये सब जॉब के विषय में, ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। लेकिन क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि कुछ कैपिटलिस्ट्स, कुछ बिजनेसमैन अपने अंडर में हजारों 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 हजार लोगों को, जस्ट दे वॉन्ट टू कीप देम एज लेबरर्स, टेक्नीशियंस। टेक्नीशियंस मीन्स एजुकेटेड लेबरर्स, दैट इज वॉट इज टेक्नीशियंस। सो इसलिए जानबूझ करके पूरा सिस्टम ऐसा है कि सम फ्यू पीपल कैन एक्सप्लॉइट अदर्स एंड दे कैन बिकम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, और बाकी सारे के सारे लोग उनको, वो उनको एक्सप्लॉइट करें, इसलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से गियर्ड है। फिर भक्तिवन ठाकुर कह रहे हैं कि बाध्यक बाधक्य एक होने शक्तिर अभावे किचु नहीं लागे भालो। अभी मेरी ओल्ड एज में अभी शक्ति अभाव, अभी शक्ति पूरी चली गई है, वृद्धावस्था में पूरी शक्ति चली जाती है, अभी किचु नहीं लागे भालो, अभी कोई अच्छा नहीं लगता है कुछ। अभी जवानी में सब इंद्रिय भोग इंद्रिय बड़ी स्वस्थ होती हैं तो सब अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, लाइफ कितनी अच्छी है, जीवन ये संसार कितना अच्छा है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो सब इंद्रियां शक्ति खत्म हो जाती है ना, डायबिटीज हो जाती है, कुछ खाते हैं तो पचता नहीं है और पच जाता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है ना। सो एवरीथिंग इज प्रॉब्लम, है ना, बैठने को जॉइंट सब आवाज करते हैं बैठ के तो उठ नहीं सकते, उठ गए तो बैठ नहीं सकते, सब ऐसे एक एक चीज, खाएं तो समस्या, नहीं खाएं तो समस्या, बैठे तो समस्या, लेटे तो समस्या, खड़े हो तो समस्या, चले तो समस्या, फिसल गए तो समस्या, एवरीथिंग इज ए प्रॉब्लम। तो उस समय में आकर के फिर आप देखा दादा दादी जी हमारे, ए भगवान कब उठाएगा, कब उठाएगा, ऐसे बोलते रहते हैं, अभी तो उठा ले, अभी तो उठा ले, थक जाते हैं पूरा, फ्रस्ट्रेट, करेक्ट, कुछ नहीं लागे भालो। जीवन जातना होइलो एक होना से विद्या अविद्या भेलो, लाइफ हैज बिकम नाउ बिकम एगोनी। अभी तो जीवन पूरा एक एगोनी, मतलब दुख दुख दुखी बन के रह गया है। फॉर माई सो कॉल्ड एरिडाइट नॉलेज हैज प्रूवन इट्सेल्फ टू बी वर्थलेस इग्नोरेंस। अभी उस समय आकर के वो जो हमने पीएचडी और जो भी हमने हासिल किया, वो जो पैसा कमाया, उस समय वो कुछ काम नहीं आता है। बुढ़ापा आया तो है, उसको सहन करना पड़ेगा, उसको दुख वो झेलना ही पड़ता है, कुछ क्या करेंगे। हाँ, मेटीरियल नॉलेज हैज नाउ बिकम ए पॉइंटेड शाफ्ट एंड हैज पियर्स्ड माय हार्ट विद द इनटॉलरेबल बर्निंग पेन ऑफ इग्नोरेंस। हाँ, अविद्यार ज्वाला घटिलो भीषमा से विद्या होइलो शेलो। तो अभी वो एक चुभती है वो एजुकेशन। क्यों चुभती है? क्योंकि कितना समय बिताया हमने उस एजुकेशन को प्राप्त करने में, ना 25-30 साल लगा दिए उसको, और वो 25-30 साल सबसे महत्वपूर्ण समय था जीवन का। करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ आवर लाइफ, फॉर्मेटिव ईयर्स, और वो हमने व्यर्थ कर दिया। वो उसका पता लगता है, पश्चाताप होता है वो बुढ़ापे में आकर के, कि वो समय अगर मैं भगवान की भक्ति में लगाता तो आज मेरे को क्लियर होता कि मैं अभी भगवत धाम जा रहा हूं, भगवान के साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया होता है ना, और जीवन सफल हो गया होता। लेकिन वो प्राइम टाइम मैंने अपना ये गधा बनने में लगा दिया, हाँ, तो इस समय वो शूल की तरह चुभता है वो, कि वो विद्या है ना, कि ये इसकी वजह से मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, इसको प्राप्त करने के लिए, ये कांच के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया पूरा। तो उस समय वो चुभता है वो नॉलेज की, क्या किया, पश्चाताप होता है मैंने क्या किया है, पूरा जीवन मैंने जो कुछ भी किया वो निरर्थक था। उस समय वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि अभी क्लियर रहता है कि साथ में कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ छोड़ना है और छोड़ना पड़ेगा। उस समय डेथ सामने दिखने लगती है, नाउ आई एम गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू डाई, है ना। सो जैसे जब हम छोटे होते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऐसे ना, एक की जगह तीन तीन चढ़ते हैं ना, ठीक है। फिर बूढ़े लोग होते हैं वो ऐसे एक एक सीढ़ी में भी एक एक पाँच पाँच मिनट उनको रुकना पड़ता है एक एक सीढ़ी पे ना, और एक एक डंडी साथ में आ करके उधर से पकड़ करके। तो छोटे बच्चे कभी ध्यान नहीं देते ना, ऐसा लगता है बाय दादा लेकिन जब 40-50 साल की उम्र होती है तो फिर जब यहाँ पर थोड़ा दादा होता है तब फिर जब देखते हैं उनको तो लगता है कि अभी मैं भी जल्दी यहाँ आने वाला हूँ सिचुएशन में। फिर तो रुक के विचार आने लगता है अभी ये स्टेज आने वाली है। लेकिन छोटे बचपन में तो वो दिमाग में एंटर भी नहीं करता कि कभी ये भी हमारी स्टेज भी ऐसी होगी ना। वैसे जब वृद्धावस्था लगती है तब फिर ये सब इस पे क्लियर दिखने लगता है कि आप ये आ रही है और नाउ आई एम एंटरिंग टू दैट स्टेज है ना। तुम्हार चरण बिना किछु धन संसार ना आछे आर, भक्ति बिनो जड़ विद्या छाड़ी तुवा पद करे सार। ओ लॉर्ड देयर इज नो ट्रेजर वर्थ सीकिंग इन दिस वर्ल्ड अदर देन योर लोटस फीट। भक्ति विनोद अबैंडन्स ऑल हिज मंडेन नॉलेज एंड मेक्स योर लोटस फीट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज लाइफ। तो हे भगवान, भक्तियों ठाकुर का ये पूरा जीवन, उन्होंने सब कुछ किया, जो भी आधुनिक हाईएस्ट पॉसिबल एजुकेशन भी प्राप्त कर ली, एक बहुत बड़ा सम्मान, सम्मानजनक स्थिति, ब्रिटिश सरकार ने उनके घर से उनको कोर्ट में आने के लिए ट्रेन रेल लाइन बिछाई थी। कैन यू इमेजिन व्हाट वाज हिज स्टेटस, ही वाज सच एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर। सो वो सब भौतिक जो भी प्राप्त करने योग्य था सब प्राप्त कर लिया, और भगवान के महान भक्त हैं तो अभी वो सार प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपके चरण के बिना इस संसार में और कोई धन नहीं है। ओनली ट्रेजर इज शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अभी आपके शरण ले रहा है। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है हम अगर इस एज में भी कम से कम अगर ये समझ जाएं तो फिर हम अननेसेसरी अपने लाइफ को वेस्ट नहीं करें। सो बात यह है कि जीवन का सार कृष्ण सेवा, कृष्ण चेतना होनी चाहिए, और जो भी भौतिक चीज भी आवश्यक है, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि भौतिक जगत में हमें रहना है, भक्ति डजंट मीन कि भौतिक जगत में हम नहीं है, वो खाना भी है, शरीर है, परिवार, वो सब हो सकता है, वो सब भी आवश्यकता है, लेकिन फोकस अलग है। एक है ये सोचना कि करियर बनाना, आगे बढ़ना, नाम कमाना और खूब पैसा कमाना, बढ़िया से बढ़िया कार, बढ़िया से बढ़िया बंगला, ये है जीवन, इसमें आनंद लेना, दिस इज गोल ऑफ लाइफ। और एक है नो, माय गोल ऑफ लाइफ इज टू एस्टैब्लिश माय रिलेशनशिप विद कृष्णा, और उसके लिए भाग्य के अनुसार मिलेगा, मैं अपना प्रयास करूंगा विद इन माई गिवन लिमिट्स, गिवन टाइम, उसके अंदर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग माई प्राइमरी गोल ऑफ लाइफ, जो जितना भाग्य के अनुसार भगवान देंगे उतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं कि वो मेरा प्राइमरी करियर बनाना है, करियर जो भी है भाग्य के अनुसार जितना मेरे लिए मिलना है, दैट इज ओके, सैटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि प्राइमरी सेटिस्फेक्शन कहां से आना है, वो भगवान की सेवा से आना है। तो ये जो आउटलुक है लाइफ के प्रति, मेटेरियल चीजों के प्रति, एजुकेशन के प्रति, उसको बदलने की जरूरत है। हमारी प्रायोरिटीज और अवर केंद्र, सेंटर ऑफ लाइफ इज डिवोशन एंड मेटीरियल थिंग्स एज मच एज इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस। सो दैट इज व्हाट वी डिजर्व। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? हम किसी से जो भी मदद देते हैं वो हम ऋणी आते हैं कहीं पर भी, तो वो ऋण तो हमको चुकाना ही होता है किसी भी, किसी ना किसी, कहीं ना कहीं किसी रूप में। यस, अगर हमने किसी से ऋण लिया है तो वो चुकाना पड़ेगा, अलग अलग बाबा जन्म लेने पड़ेंगे उसके लिए। नहीं, मुख्य रूप से ये सब ऋण चुकाने की बात मनुष्य जीवन में आती है और ऋण लेने की बात भी मनुष्य जीवन में आती है। जानवरों के जीवन में कोई, मनुष्य जीवन ही कर्म भूमि, कर्म जन्म है जिसमें कर्म बनता है और कर्म चुकाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब मनुष्य में आती है। जानवरों में कोई, जानवर तो क्या समझते हैं ऋण चुकाना, उनकी चेतना ही नहीं है उसमें कुछ चुकाने से। ऋण चुकता है चेतना से ना, केवल करने से नहीं, उसके साथ अलॉन्ग विद दैट कॉन्शियसनेस दैट दिस आई एम डूइंग टू रिपे इट। अभी ये लेक्चर के कंसर्न में कुछ प्रश्न पूछिए। यस,
मैंने इतनी बार सुना जड़ विद्या इस तरह से कला बना रही है, इतना सब सुनने, इतना सब पढ़ने के बावजूद भी अगर हम आसक्त हैं उसको निकाल नहीं पा रहे और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए हमारा स्तर क्या है?
हम लोग इतना जड़ विद्या के बारे में सुन रहे हैं लेकिन फिर भी आसक्ति छूट नहीं रही है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारा स्तर क्या है? गधे जैसा स्तर है ऐसे ही समझना चाहिए कि हम गधे की चेतना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वी आर आफ्टर हियरिंग आफ्टर एवरीथिंग, हमारी आसक्तियाँ बनी हुई हैं, वी आर नॉट एबल टू गिव देम अप। सो देन वी हैव टू एक्ट लाइक एन एस, व्हाट टू डू? देखिए, अल्टीमेटली वी विल डू व्हाट हम, जिस जो भी हमारी कन्विक्शन बन पा रही है उसी के अनुसार जीवन जी पाएंगे। सो सो आसक्तियाँ हैं उसको रिकग्नाइज वो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आसक्तियाँ गलत हैं, ये इससे निकलना है, ये कम से कम अगर शुद्ध है तो भी कोई होप है कि धीरे धीरे निकल पाएंगे। ठीक है, जिस स्तर पे भी हम हैं उस स्तर पे हमें काम करना होगा। अगर आसक्तियां हैं तो आसक्तियों को तुरंत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ठीक है, वो जो भोग करने की इच्छा है उसको करें, करना ही पड़ेगा, विवश है करने के लिए क्योंकि वो नहीं छूट रही है। लेकिन अगर कम से कम हमारे अंदर समझ है कि है गलत आ सकती है, मेरे है दुर्भाग्य कारण, तो फिर हम भक्तों का संग नहीं छोड़ें और श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ें और प्रार्थना करते रहें भगवान से कि भगवान हमें जल्दी से जल्दी साक्षात्कार हो कि ये सब गलत है और हम इसको छोड़ पाएँ। ऐसी कम से कम प्रार्थना करते रहें और भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करते रहें, दवाई लेते रहें, तो फिर होप है कि हमारी धीरे धीरे ये आसक्ति छूटेगी। और जो लोग के अंदर कि आई डोंट वांट टू गिव इट अप ना, ये सब नहीं देखा है, तो वो लोग तो फिर कंटिन्यू कर ही नहीं पाएंगे प्योर डिवोशन सर्विस। वो लोग तो फिर कहीं ना कहीं उधर सेट हो ही जाएंगे नीचे के स्तर पर, कहीं ना कहीं वो शुद्ध भक्तों के संग से अपने को दूर कर ही लेंगे। लेकिन जिनके अंदर शुद्ध भक्त हैं वो साधना के अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं। आसक्तियाँ हैं, आसक्तियाँ एकदम से नहीं जाएँ वो ठीक है, सुनने के बाद भी नहीं जाएँ वो ठीक है, लेकिन कम से कम उसके लिए हम प्रयासरत रहें कि हाँ हम जानते हैं कि गलत है एंड वी वांट टू कम आउट ऑफ इट, तो वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं आगे।
अब ये सब बोले कि जैसे कि 12-13-14 साल हो जाता है पढ़ते पढ़ते, जैसे लड़की होती कोई पढ़ती है लड़का होता है तो उसको पता है कि बाहर कॉलेज में और स्कूल में वातावरण कैसा है, उसके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर उसको बोला जाए कि पढ़ाई छुड़वा दो तो वो बोलेंगे नहीं, हमारे जो सगे वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपने ऐसा पढ़ाई इसको छुड़वा दिया, अब ये भविष्य में क्या करेगी, या फिर अगर वो फर्स्ट एड हो गई तो उसने आत्महत्या कर लिया तो क्या होगा। तो फिर उस परिस्थिति में इस चीज़ का सोल्यूशन क्या, कि अब उसको किस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट किया जाए जिस तरीके से उसकी आसक्ति पढ़ने में कम हो जाए। और जैसे कि एक पुरुष का धर्म होता है और स्त्री का धर्म होता है, तो वो किस तरीके से वो उसको डाइवर्ट हो और उसकी आसक्ति हालांकि हो चुकी है भौतिक एजुकेशन में क्योंकि नंबर लाना है रैंक लाना है, तभी उसका माइंड किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए।
जैसे सबका, जैसे पूरे जगत में सबका माइंड हम डाइवर्ट करते हैं बाय प्रीचिंग, देयर इज नो अदर सेपरेट फॉर्मूला फॉर दैट, कि जो लड़के लड़की है उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई अलग से गुट्टी है। द सेम थिंग वी प्रीच एवरीवन अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनके सही में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे जो उनको करना है।
उनका उनको ऐसा लगता है कि अगर उसने सुसाइड कर लिया तो,
और बहुत ही जगह वो पढ़ करके कोई सुसाइड नहीं करता है। आपको पता है कोटा में कितने लोग सुसाइड करते हैं बहुत ही एजुकेशन प्राप्त करके और फर्स्ट एड होकर के? तो सुसाइड करता है तो मतलब आप कह रहे हैं माता पिता की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो वो सुसाइड कर लेगा तो क्या होगा। तो माता पिता बच्चों को बचपन से अगर भक्ति का ट्रेनिंग देंगे तो भक्त बनेगा, बहुत ज़्यादा चांस है भक्त बनने का। और भौतिक हमारे भाग्य के अनुसार हमको मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि मेटेरियल एजुकेशन प्राप्त करके सबको तो जो वांछ जो चाहते हैं वो सब बन जाते हैं और फिर सब खूब अच्छा उनको लगता है और कोई सुसाइड नहीं करता है। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, भौतिक जगत भौतिक मेटेरियल एजुकेशन वो तो हमेशा फ्रस्ट्रेट ही करने वाली। जिसने अगर भक्ति का ज्ञान लिया है और वो अगर पूरी तरह से भक्तों के संग में नहीं रह पाया तो भी वो भौतिक जगत में भी रह करके कम से कम सुसाइड नहीं करेगा, वो विल बी मोर बैलेंस्डली प्लेस्ड। वो जानेगा कि जीवन केवल, अगर मैं कोई एग्जाम में फेल हो गया तो उससे जीवन खत्म कर दो ये कोई मतलब नहीं है, केवल एग्जाम पास करना ही कोई सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, फेल होना सबसे बड़ी दुर्घटना नहीं है जीवन की। सो देयर इज मच मोर चांसेस दैट ही विल नॉट कमिट सच अ ग्रॉस सिंफुल एक्टिविटी। और कोई बच्चे को क्या है, कोई जबरदस्ती हो ना कि किसी का भी उसको माता पिता को जबरदस्ती, तुम्हें किसी का बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो गया 1500 साल का हो गया उसको जबरदस्ती स्कूल से निकलवाने में, सो दैट इज मैडनेस, दिस क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अगर 15-16 साल का बच्चा थोड़ा उसका बोला मुझे तो इंजीनियर बनना है, नहीं ऐसे होना हम करेंगे, बेवकूफ है हम लोग क्या? जब आदमी को बड़ा हो गया प्रीचिंग इज कन्विंसिंग देम, इज नॉट फोर्सिंग देम, देन व्हाई ही विल डू लाइक दैट? इफ ही इज कन्विंस्ड ही विल कम, वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स हिम ना, सो वी आर नॉट आस्किंग पेरेंट्स टू फोर्स योर चाइल्ड। लेकिन जब बच्चा है 5-6 साल का तब थोड़ा फोर्स की बात होती है, तो उसका नेचुरल है, जैसे आप चाहें वैसे करेंगे।
पंद्रह सोलह साल का अगर वो भक्ति में कन्विंस ना हो और कम्प्लीटली उसका एम ये की बन जाए कि नहीं मुझे ये चाहिए करना है,
तो फिर क्यों हम कहेंगे कि उसको जबरदस्त चलाओ? भक्ति जबरदस्ती होती नहीं ना कहेंगे, सो दैट वी डोंट डू। हरे कृष्ण। यस,
जैसे बहुत रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं कि भक्ति करो,
लेकिन कौन बोलते हैं?
रिलेटिव्स वगैरह से
रिलेटिव्स
बोलते हैं कि भक्ति करना है करो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट एक लेवल हो जाए भक्ति में, भक्ति और अच्छे से करना है, डोनेशन कर सकते हैं, पहले एक अच्छे से लेवल पे आ जाओ, पढ़ाई कर लो, उसके अच्छे से मतलब हायर लेवल पे जॉब वगैरह मिल जाए उसकी, या तो बिजनेस स्टार्ट हो जाए और अच्छा पैसा आ जाए उसके बाद डोनेट करो भक्ति, पैसा कमा के भक्ति करना, मतलब उससे मतलब हम लोग पहले से भक्ति कर सकते हैं, हम लोग को जरूरत नहीं इतना पैसा कमा के इतना हाई लेवल पे पहुंच के फिर डोनेशन करो ये करो।
लेकिन वो लोग कनिष्ठ अधिकारी है ना, उनको लगता है कि जो अच्छा पोजीशन सोसाइटी में होना, ज्यादा पैसा, ये भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, उनके लिए भक्ति जीवन का एक अंग है ना? और भी बहुत सारी चीजें हैं जीवन में करने के लिए, कल भक्ति धोन रह गई, जीवन में और बहुत कुछ चीजें हैं, जीवन में एक अच्छा पोजीशन भी होनी चाहिए, ये भी तो है, ये क्यों नकार रहे? दिस इज न्यूफाइट टेंडेंसी है ना, तो उनके लिए इसलिए अगर आप भक्त बन गए और मंदिर में रह करके अगर आप बर्तन साफ कर रहे हैं भगवान के, तो वो अच्छी भक्ति नहीं है। अगर आपका एक बहुत बड़ा सोसाइटी में नाम है, बहुत पैसा, फिर आप डोनेशन देते हैं और फिर आपका नाम पूरा आता है, इस व्यक्ति ने हमें इतना सारा डोनेशन दिया है, कितना बड़ा भक्त है ये, ज्यादा अच्छा भक्त है, उनके ऐसा रहता है, तो इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम कल को उठ करके अगर तुम मंदिर में तुम बर्तन साफ करने पड़े तो क्या भाई, इससे अच्छा है ना कि तुम जाकर के बड़ा डोनेशन दो, क्योंकि दे आर हैविंग वैल्यू टूवर्ड देयर नेम एंड फेम। भक्त में नाम होना चाहिए, अगर भक्ति में डोनेशन तो डोनेशन में नाम होना चाहिए, दस रुपए दे दिया, एक लाख रुपए, उससे नाम हो तो उनका प्राइमरी फोकस है, वह नाम होना चाहिए। सो इट्स ऑल न्यू फाइट टेंडेंसी।
जैसे बताते हैं कि जैसे मफतलाल है, ही इज वेरी फेमस, सो बताते हैं कि वो आता है मंदिर में, इस्कॉन ही इज आल्सो इन कमिंग इन इस्कॉन टेंपल इन चौपाटी, आता है लेकिन चप्पल सबको उठा के रखते, तो सोच सकते हैं आप कि कितना इतना अमीर आदमी करता है।
तो वो मफतलाल बिना बनाए मैं चप्पल साफ कर सकता हूँ ना, उसके लिए पहले मफतलाल बनना पड़ेगा फिर चप्पल साफ करनी पड़ेगी। अगर चप्पल ही साफ करना है तो उसके लिए तो मैं अभी से कर सकता हूँ, फिर उसके लिए मफतलाल बनने की क्या जरूरत है? तो मफतलाल को सोचना चाहिए, मैंने मफतलाल बन के क्या किया, चप्पल साफ करनी थी इसके लिए, isn't it? तो आप पेरेंट्स को बोलो अभी वो चप्पल साफ कर रहा है ना मफतलाल बन के भी, तो फिर मुझे मफतलाल क्यों बनाना चाहते आप? आई कैन डू इट इमीडिएटली। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।